लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साधी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति। हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्या की देवी सरस्वती आपके मुख पर सदा विराजमान है। आप हर की पौड़ी की गंगा है। ऐसे वरदानों से जिन्हें स्वयं भगवान ने सजाया है, ऐसी हमारी आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आपका ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि स्वयं ब्रह्मा बाबा की गोद में आपका अलौकिक जन्म हुआ और फिर तो लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए आप बड़े हुए और मुंबई यूनिवर्सिटी से बीएससी की एग्ज़ाम पूरी करके आप 1969 में मधुबन में पहुँचे प्रथम टीचर्स ट्रेनिंग करने और उसके द्वारा राजयोगा टीचर बनकर बाबा ने दादियों ने आपको सेवा अर्थ देश और विदेश की धरनी पर भेजा। देश में आप पहले राजकोट गए, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल, मॉरिशस, अफ्रीका आदि आदि स्थानों पर आपने जाकर खूब सेवाएं की। नए सेवा केंद्र खोले, बाबा के बच्चे निकाले और फिर 1976 में जब आप मधुबन आए मॉरिशस से, आपके लिए एक सुनहरा अवसर, स्वर्णिम अवसर इंतजार कर रहा था और वो सुनहरा अवसर था। दादी ने आपको ऑफर किया मधुबन निवासी बनने का। सबको होती है ना तमन्ना, और आपको सामने से ऑफर मिला जिसको आपने सहर्ष स्वीकार किया। तो 76 से लेकर आज दिन तक इस मधुबन धरनी में रहकर आप देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 75 से भी अधिक देशों में भ्रमण करके आपने बाबा का संदेश पहुंचाया है जन जन तक। आत्माओं को परमात्मा से जोड़ा है। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं और इस पांडव भवन में पूरे ही साल भर, चाहे वो डबल विदेशियों के प्रोग्राम हो, चाहे भट्टियों के प्रोग्राम भारतवासियों के लिए, आप उनके कोऑर्डिनेटर हैं। और इन सब से बढ़कर आपने जो बाबा से, दादियों से, मम्मा से पालना लेकर अपना जीवन उनकी आशाओं के अनुरूप गढ़ा है, अब वही पालना आने वाले हर भाई बहन को देखकर उस मम्मा और बाबा की किसी को कमी खलने नहीं देते हैं। वर्तमान में दादियों जैसा प्यार सबको देना, पालना करना, यही आपकी मुख्य सेवाएं हैं। वरदानी महादानी बनकर अभी सेवा करनी है तो वो हम आपको प्रैक्टिकल स्वरूप में देखते हैं। इतना ही नहीं, सहनशीलता, मधुरता और धैर्यता की त्रिवेणी नदी आपके जीवन में सदा बहती रहती है। और भी कई आभूषणों से बाबा ने आपको सजाया है, मूल्य रूपी आभूषणों से, वो स्वयं ही हम इन 5 दिनों में अनुभव करेंगे। आज हम सब के सामने भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य बताने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। लक्ष्य है हमारा महसूसता द्वारा संपूर्णता। बहुत ऊंचा लक्ष्य है और उससे ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करने होते हैं। और इसलिए दीदी को आज का टॉपिक दिया है निश्चय, निश्चित और निश्चिंत। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए दीदी भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे। तो सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी
आप भी अपना परिचय दो।
शरीर का नाम इंदिरा बहन है। घर बैठे हमें ज्ञान मिला 1987 में और 1998 से हमने यह जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आरंभ के 5 वर्ष ज्ञान सरोवर अकेडमी में, स्पार्क ऑफिस में सेवा देने का सौभाग्य मिला कि जहाँ 5 सालों की सेवाओं के दौरान बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया एक पुस्तक लिखने के, और वो पुस्तक का नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा, जिसका विमोचन स्वयं बाप दादा ने वर्ष 2001 में अपने हस्तकमलों से डायमंड हॉल में किया था। और उसके बाद चूंकि हम नागपुर सब जोन को बिलोंग करते हैं तो नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का अवसर मिला। स्पार्क से जुड़े थे, मतलब रमेश भाई और उषा बहन से जुड़े थे, तो नागपुर के बाद उन्होंने हमें गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया। और चूंकि हमारे समर्पित जीवन की यात्रा तो हेडक्वार्टर से हुई थी, बाबा ने पुनः हेडक्वार्टर में अवसर दिया। तो वर्ष 2009 से हम हेडक्वार्टर में पांडव भवन में ग्लोबल ऑफिस में अपनी सेवाएं देते हैं। शीलू बहन उसके लिए निमित्त हैं और इसके लिए उनकी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में हम अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, माता पिता की कर्म भूमि, सभी दादियों की सेवा भूमि और हम सब मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से आप सभी को इस मधुबन वरदान भूमि में आने का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हर एक की इच्छा होती है कि हम मधुबन में पांडव भवन में भट्टी करें। वैसे तो अपने सेवा केंद्रों पर भी आप भट्टी करते होंगे, सब जगह भट्टियाँ चलती रहती है, लेकिन पांडव भवन की क्या विशेषता है, या तो लगातार तपस्या चलती रहती है, चार धामों की यात्रा करने देश विदेश से भाई बहने आते हैं, और यहाँ का शुद्ध पवित्र वातावरण सबके लिए मन लुभावना है। आज ये सवेरे कई कह रहे थे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं। हाँ, मुंबई में तो गर्मी में तड़प रहे थे, और यहाँ बाबा ने ठंडी ठंडी हवाएं दी, तो अच्छा लग रहा है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, तो जैसे एयर कंडीशन में बैठे हैं ना, कहाँ गर्मी से तपत से निकल के यहाँ आए हैं। तो फिर से स्वागत है, और बहुत बड़ा लक्ष्य आप सबके सामने रखा है। जैसे ही आपको यह बैज मिला, यह कहेंगे गले में माला मिली, इसमें आपको ये संकल्प दिया गया कि आपको संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से तपस्या करनी है। तो अंदर में क्या महसूसता लानी है जिससे आप संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करें, क्योंकि यही बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है। उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है, मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, स्वर्ग की स्थापना करना, ये तो बहुत बड़ा उद्देश्य है। लेकिन उसके लिए हमें पहले स्वयं को संपन्न बनाना है, संपूर्ण बनाना है। ये दो शब्द है, संपन्न और संपूर्ण, दोनों में क्या अंतर है? पहले कौन सा शब्द आता है, संपन्न या संपूर्ण? पहले संपन्न, फिर संपूर्ण, और उसका बहुत सुंदर मिसाल है चंद्रमा। पूर्णमासी की रात चंद्रमा संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है। संपन्न अर्थात प्रकाश में संपन्न, फुल जिसको कहें, फुल पूरी लाइट चंद्रमा की मिलती है, और संपूर्ण माना जो गोलाकार है वो भी संपूर्ण, बाकी जितने भी दिन है थोड़ा थोड़ा तो कम होता ही है। चाहे पूर्णमासी की तरफ जाएं या अमावस्या की तरफ जाएं, धीरे धीरे चंद्रमा में परिवर्तन आता है आकार में, लेकिन पूर्णमासी पर संपन्न और संपूर्ण हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है। इसलिए देवताओं की महिमा में भी दोनों शब्द है, सर्व गुण संपन्न। तो संपन्न किस में बनना है? गुणों में। और संपूर्ण किस में बनना है? 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला माना पवित्रता की संपूर्ण कलाएं, क्योंकि 16 माना संपूर्ण, 16 आना। इसीलिए भारत में पहले हमारी जो करेंसी चलती थी वो आना, और जिसको रुपया पैसा आदि कहते थे, तो 16 आना। तो 16 आना सच माना संपूर्ण सच। तो 16 आना अर्थात चंद्रमा की 16 कलाएं, और 16 में सब कुछ आ जाता है, 16 श्रृंगार भी आ जाता है ना। दुल्हन के 16 श्रृंगार होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक 16 श्रृंगार माने जाते हैं। तो बाबा हमें 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, अर्थात संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, ऐसा ऊंचा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है। और उसके लिए बाबा कहते हैं रोज अपनी चेकिंग करो कि कितने गुण हमारे जीवन में आए हैं, फिर चेक करके चेंज करो। और इन सब के लिए बाबा की जो उस दिन की मुरली चली, निश्चय, निश्चित और निश्चिंत, याद है वो मुरली? सारी मुरली याद होगी, रविवार की मुरली थी। तो बाबा कई बार ऐसे तीन तीन शब्द बताते हैं, निश्चय से दूसरे भी दो और शब्द है। दूसरे शब्द क्या है? निश्चय, नशा और निशाना, बाबा ये भी कहते हैं। निश्चय किया, निश्चय है तो नशा भी चढ़ेगा, और नशा है तो निशाने तक पहुंचेंगे। और दूसरा निश्चय, निश्चित और निश्चिंत, तीनों में कितनी समानता है, लेकिन तीनों का कितना अलग अर्थ है। और चार प्रकार का निश्चय बाबा ने कहा है, स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। और इन चारों प्रकार के निश्चय में अगर थोड़े में थोड़ा भी कम है, अर्थात निश्चय के ये जो पांव है वो हिलेंगे, जैसे टेबल के चार पांव होते हैं, अगर थोड़ा भी कुछ ढीला है तो हिलेगा ना टेबल। इसीलिए चारों तरफ से कोई भी पार्सल भी बांधेंगे तो इतना टाइट चारों तरफ से हो, ऐसे नहीं हो कि तीन तरफ तो बहुत टाइट और एक ढीला हो तो क्या होगा, वो हिलता रहेगा। तो इसी प्रकार निश्चय के भी ये चार पांव हैं, पावे वो इतने पक्के हो कि एक भी हिले नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, या तो खुद में निश्चय की कमी हो जाती है, या तो बाबा में निश्चय की कमी हो जाती है, या तो ड्रामा में निश्चय की कमी हो जाती है, या ईश्वरीय परिवार में निश्चय की कमी हो जाती है। तो इसलिए हर वक्त अपने आप को याद दिलाना है कि हमारे ये चारों ही जो पांव है वो मजबूत है। तो चेक और चेंज, अपने में निश्चय की भी कमी कैसे रहती है? बाबा कहते हैं रोज सवेरे उठ करके स्वमान एक ले लो, यहाँ भी आपको रोज एक स्वमान मिलेगा, उस स्वमान का चिंतन करो, मनन करो, मंथन करो और उसका स्वरूप बनो। क्योंकि जो भी हम संकल्प करते हैं वो स्मृति के रूप में है। तो स्मृति तो आ गई, बाबा कहे तुम होली हंस हो, बहुत सुंदर टाइटल बाबा ने दिया। तो सारे दिन में ये चेकिंग हो कि मैं होली हंस कितने तक हूँ, क्या विशेषताएं होती है होली हंस की। होली हंस माना एकदम पवित्र, होली हंस माना नीर और क्षीर को अलग करने वाला, होली हंस माना परखने की संपूर्ण शक्ति, होली हंस माना जो सकारात्मक रूप है, मोती है वो ग्रहण करना और कंकड़ को फेंक देना। तो सकारात्मक चीज को लेना, गुण लेना, अवगुण को फेंकना, ये होली हंस की विशेषता है। तो जब हम सवेरे से ये संकल्प करते हैं तो सारे दिन में चेकिंग होती है। अगर किसी की नेगेटिव बात हमने देख ली, पता तो चल ही जाती है, लेकिन उसको हमें धारण नहीं करना है। धारण करेंगे तो फिर वर्णन भी करेंगे, और वर्णन करेंगे तो क्या पता वो आपके अंदर भी आ जाए, पता थोड़ी चलता है। कहेंगे कि देखो फलाने में कितना क्रोध है, और देखो दूसरे घड़ी खुद ही क्रोध कर लेंगे, दूसरे का नुक्स तो निकाला कि देखो इसके अंदर कितना गुस्सा है, और फिर अपने अंदर गुस्सा आया क्योंकि उसका चिंतन किया कि उसमें गुस्सा है, तो वो गुस्सा फिर वो भूत लग जाता है ना, तो भूत क्या करता है, दूसरे में है तो आपको भी लग जाएगा, इसीलिए आप में भी आएगा। फिर आप में आया तो आपको कहा जाएगा, आपने तो उनके लिए कितना कहा कि कितना क्रोध है, पर आपकी तो आप में भी है। तो बाबा ने उस दिन क्या कहा, फिर बहाना देंगे, हाँ जस्टिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, जस्टिफिकेशन माना अपनी दलील देते हैं। दलील क्या देते हैं, अगर ये ऐसे न करता तो मुझे गुस्सा थोड़ी आता, पर इसने ऐसा किया जो मुझे गुस्सा आ ही गया, तो गुस्सा इसने दिलाया। तो बाबा कहते कोई किसी को गुस्सा नहीं दिला सकता है, गुस्सा अगर आया तो अपने अंदर से आया, आपका ही ये संस्कार है जो कहीं छिपा हुआ है गुस्से का, इसीलिए आपके अंदर आया, उसने दिलाया, ये तो बहाना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि किसी का अवगुण देखा वो आपको चिपक जाएगा, और अगर आदत पड़ गई तो फिर सबका अवगुण ही देखेंगे, गुण तो किसका दिखाई नहीं देगा, और अवगुणों पर देखने की आदत चली गई तो वही चिंतन चलेगा, फिर बाबा की याद कहाँ रहेगी। बाबा की याद तो तब रहे जब एकदम क्लियर क्लीन बुद्धि हो, क्लियर भी हो और क्लीन भी हो, साफ भी हो और शुद्ध भी हो, तो वो तब होगा जब किसी का भी अवगुण हमारे चित्त पर न हो। क्योंकि बाबा ने कितना ऊंचा ज्ञान दे दिया है, बच्चे हर एक का अपना अपना पार्ट है ना, कोई एक्टर होते हैं ना, अभी जब उनकी रिहर्सल चलती है एक्टरों की, या शूटिंग भी करनी होती है, तो पहले रिहर्सल तो करते हैं ना, तो रिहर्सल में क्या करते हैं, एक्टर का काम है अपना एक्टिंग दे याद करना, अपने जो उसका उसके जो बोल होने हैं या उसको जो बोलना है वो याद करेगा। अब दूसरे को क्या बोलना है वो थोड़ी वो याद करेगा, उसको जो बोलना है वो दूसरा सोचे ना, वो क्यों सोचे, उसको अपना देखना है, दूसरा क्या कह रहा है कैसे कह रहा है वो डायरेक्टर जाने, वो चेकिंग करेगा, वो करेक्शन करेगा, आप तो उनको नहीं देखेंगे ना, आपको अपना जो रोल है, आपको जो बोलना है, आपका जो डायलॉग है वही आपको याद करना है, और उसी में ध्यान देंगे या दूसरे को क्या बोलना है वो देखेंगे, क्या करेंगे, हाँ क्योंकि अभी दूसरे को देखेंगे उसको क्या बोलना उसको क्या, तो अपना तो भूल ही जाएगा। स्टूडेंट्स भी होते हैं तो पढ़ाई करनी है, वो क्या पढ़ रहा है, वो कितना पढ़ रहा है, उसने कहाँ तक पढ़ाई की वो देखेंगे, या खुद को क्या पढ़ना है वो, मुझे कितना करना है वो देखेंगे। अब दूसरों का ही देखता रहे तो अपना कब देखेगा, इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों को मत देखो, दूसरों के अवगुणों को देखेंगे तो फिर चित्त पर रखेंगे, और ऐसे तो कोई नहीं है कि सब संपूर्ण है, कोई ना कोई डिफेक्ट कमी तो हर एक में है ही। कल भी बाबा की कितनी सुंदर मुरली चली, बाबा ने कहा तुम डायमंड हो, सच्चे डायमंड, हाँ वो जो डायमंड होते हैं उसमें फ्लॉ होता है, दाग होता है, तो उसको तराशते हैं, है ना, काटते हैं, तो काटते हैं तो फिर वो दाग निकालते हैं, उसमें चमक लाते हैं। अब हम तो चेतन हीरे हैं, तो चेतन हीरों को काटेंगे थोड़ी, हाँ तो लेकिन ये दाग कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, बाबा की याद से। तो बाबा की याद माना उस संपन्न संपूर्ण को देखना, तो जब संपन्न संपूर्ण को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम भी वो ही बन जाएंगे। तो बाबा को देखा माना अपना ओरिजिनल संपन्न संपूर्ण स्वरूप याद आएगा, इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा को ही देखो, बाबा से ही सुनो, बाबा से ही बातें करो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और उसी में कल्याण है। यहाँ तक आज बाबा ने क्या कहा कि देहधारियों को याद किया तो क्या बन जाएंगे, पतित बन जाएंगे, पापात्मा बन जाएंगे, यहाँ तक बाबा कहते हैं विकर्म बन जाएंगे, क्योंकि देहधारी को याद करना माना या तो कामवश या तो क्रोधवश या तो लोभवश या तो मोहवश या तो अहंकारवश या तो ईर्ष्या या तो द्वेष या तो वैर या तो नफरत, उसी वश हम उनको देखेंगे। अगर समझो प्यार भी है, वो प्यार अगर देह अभिमान के आधार पर है वो तो या तो मोह हो जाएगा या तो काम वासना हो जाएगी, क्योंकि है तो विकार ना, देह के प्रति आकर्षण माना वो विकार बन जाता है, वस्तु के प्रति आकर्षण वो भी विकार बन जाता है। हाँ, इसलिए देखो दुनिया में सन्यासी जो होते हैं वो कहते हैं ये सब माया है, सब माया है, स्त्री माया है, धन माया है, ये बाल बच्चे सब माया है। और बाबा कहते हैं ये माया नहीं है, परंतु उनके प्रति जो दृष्टि है वो माया है। स्त्री के प्रति अब अगर काम की दृष्टि है तो वो माया है, बच्चों के प्रति अगर मोह की दृष्टि है तो वो माया है, धन के प्रति अगर लोभ की दृष्टि है तो माया है। बाकी तो वो तो जीवन के लिए जरूरी है, परिवार के लिए तो सब कुछ चाहिए परिवार में, इसीलिए वो माया नहीं है, वो तो देवताओं के पास भी था, लक्ष्मी और नारायण साथ में दिखाते हैं। धन की तो कोई कमी नहीं थी, उनको भी बच्चे थे, लेकिन वहाँ कोई विकार नहीं था क्योंकि देह अभिमान नहीं था। और जैसे देह अभिमान आया द्वापर युग से तो विकार भी साथ साथ आए। तभी विकारों को भगाना है तो कैसे भगाएंगे, रावण ऐसे तो नहीं मरेगा, एक एक सिर काटेंगे तो नहीं मरेगा। हाँ, अभी काम को मारा, अभी क्रोध को मारा, अभी लोभ को मारा, अभी मोह को मारा, तो ये विकार नहीं मरेंगे, रावण नहीं मरेगा। मारना है तो एक साथ मारना है, और उसके लिए क्या करना होगा, हाँ उसके लिए क्या करना होगा, विभीषण ने क्या कहा राम को, हाँ ये रावण ऐसे नहीं मरेगा, उसको नाभि में मारो, नाभि वो उसका बीज है, ये की सारी जो चेतना है उसका बीज उसकी नाभि है, तो नाभि में आप मारेंगे तब रावण मरेगा। इसलिए एक एक विकार को मारने से विकार नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी जड़ है देह का अभिमान, और देह का अभिमान खत्म में और उसके लिए कैसे खत्म होगा, ये तो नहीं कि हाँ मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, पहले तो देह याद करेंगे, देह नहीं हो तो ये देह भूलेगी कैसे, देह भूले तब है जब मैं क्या हूँ वो याद करे। हाँ, जैसे वो कहानी बताते हैं ना, एक शिष्य गुरु के पास गया तो गुरु को कहा कि गुरुजी मेरा मन बहुत भटकता है, बहुत भटकता है गुरुजी, मैं क्या करूं। तो गुरु ने कहा मुझे ऐसा मंत्र दो कि मेरा मन न भटके, तो गुरुजी ने उनको मंत्र दिया, लेकिन साथ में ये भी सावधान किया, देखो जब ये मंत्र जाप करो ना तो बंदर याद ना आए, बंदर याद ना आए तब ये मंत्र काम करेगा। अब जैसे वो मंत्र जाप करे उसको याद आए बंदर याद ना आए, हाँ बंदर याद ना आए तो क्या हुआ, सबसे पहले बंदर ही दिखाई दिया। अब बंदर वो जाए ही नहीं, बंदर ही आए तो वो मंत्र तो सार्थक होगा नहीं, तो फिर गया गुरुजी के पास, गुरुजी ये मंत्र तो काम ही नहीं कर रहा है, बंदर तो बहुत याद आ रहा है। तो कहा नहीं, ये मंत्र तभी काम करेगा जब बंदर याद नहीं आएगा। अब वो तो सारा उनका मंत्र ही फेल हो गया, हाँ क्योंकि मन का भटकना तो चलता ही रहा। इसीलिए मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ये कहने से देह अभिमान नहीं जाएगा, लेकिन क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये कहने से मैं आत्मा अभिमानी बनेंगे। तो इसीलिए बाबा ने आज भी कहा, मम्मा की मुरली थी ना लास्ट में, तो मम्मा की मुरली में क्या था, ओम कहते हैं, कितना जोर से इतना लंबा खींचते हैं ओम, ये आवाज अच्छी है ना, अच्छा लगता है, वाइब्रेशंस आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि देह अभिमान खत्म होता है, क्योंकि ओम का मतलब है मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ वो आत्मिक स्थिति नहीं बनती है, वो खाली आवाज़ को चेक करते हैं, वो कहाँ तक मेरी आवाज़ ओम लंबा, कहाँ तक वो श्वास मैं ले पाता हूँ, उसी में जाते हैं। और फिर देखो तो फिर दे अभिमान आया और फिर अभिमान आता है, मैं तो बहुत कितना लंबा मैंने खींचा, कितना लंबा किया, तो आत्माभिमानी तो बने नहीं और ही दे अभिमानी हुए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये मुख से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मुख से कहना नहीं है, सारा इतना जोड़ना रखना भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये तो अंदर ही है ना जप आजाप। और फिर जब हम कहते ओम शांति, ये भी केवल मुख से कहने की बात थोड़ी है। एक शिविर में एक भाई आया था तो उसने मेरे को कहा बहन जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो मैं मुझे कोई ऐसी युक्ति बताओ सरल जिससे मेरा गुस्सा चला जाए। तो उस समय इतना टाइम तो नहीं था ज़्यादा सुनाने का, तो मैंने उसको दो मिनट में यही कहा, जब भी आपको गुस्सा आए ना तब आप कहना ओम शांति, ओम शांति, तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैंने उनको ऐसे कहा। अब वो जब शिविर पूरी हुई घर गया, अब जैसे घर गया तो पत्नी ने कुछ बात कह दी, हाँ कोई किसी शिकायत कर दी, अब उसको सुनना नहीं था, वो तो यहाँ से नशा चढ़ा था उसको, तो घर गया तो पत्नी ने कुछ कह दिया, अब उसको गुस्सा आ सकता था लेकिन उसने कहा ओम शांति, गुस्सा नहीं किया। फिर और आगे गया तो माँ ने कुछ कह दिया, उसने कहा ओम शांति। फिर पड़ोसन ने कुछ कह दिया, ओम शांति। और फिर किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, ओम शांति। तो ओम शांति भी अभी ओम शांति उसको कहना था लेकिन वो शांत स्वरूप बन के नहीं कहा, बस ओम शांति ओम शांति, तो गुस्से में कह दिया ओम शांति। अब उससे थोड़ी गुस्सा जाएगा, जाएगा भाई, वो तो केवल मुख तक ही था ओम शांति ओम शांति। तो कहने का भाव उस, वो फिर उसने उनको पत्र लिखा, बहन जी गुस्सा तो गया ही नहीं। तो मैंने कहा आपने कैसे कहा ओम शांति, तो फिर वो सारा प्रसंग लिखा, हाँ फोन किया या कुछ, तो मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, जब आपका ओम शांति तो वो स्वरूप बन जाओ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इसलिए जब भी हम कमेंट्री भी करते हैं तो ये कमेंट्री में ये नहीं कहते मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, पर मैं क्या हूँ वो बोलो, मैं आत्मा हूँ, हाँ मैं देह नहीं हूँ ये नहीं कहो, पहले तो देह याद आएगी, फिर नहीं हो ये फिर और मेहनत करो, पर मैं आत्मा हूँ तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि देह तो ज़रूर नहीं है फिर, हाँ मुझे गुस्सा नहीं करना है नहीं करना है, तो ये कहने से गुस्सा तो पहले याद आया, तो उसकी जगह क्या कहो, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, तो वो गुण याद आया तो अवगुण अपने आप खत्म होगा। ऐसे नहीं, ऐसे गुण नहीं आएगा पर गुण को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर से तो गुण नहीं आते, कोई भी गुण बाहर से नहीं आता, ये है तो आत्मा का ही स्वभाव। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूज कैनॉट बी टॉट, दे आर कॉट। हाँ जो वैल्यूज है ना, ये गुण जो है, अगर किसी के ये गुण है, अब मेरे अंदर शांति का गुण है, अब मैं शांति का गुण सिखाऊंगी कैसे, बस शांत रह करके अपने वाइब्रेशन से किसी को शांति का अनुभव कराऊंगे, ऐसा ही होगा ना। हाँ ऐसे नहीं कहूँगी शांत रहो शांत रहो शांत रहो तो शांति उसको अनुभव होगी, क्योंकि आवाज़ में आ गई। हाँ कई बार स्कूल में टीचर्स को देखते हैं ना, अब आवाज़ कर रहे हैं बच्चे, बहुत शोर कर रहे हैं और टीचर पहुँच गई, और जैसे टीचर पहुंची तो बच्चे तो आवाज़ ही कर रहे हैं, वो ध्यान भी नहीं देते कि टीचर आई है, तो टीचर क्या करती है लकड़ी उठा के टेबल पर मारती है, शांत साइलेंस 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 साइलेंस। अब सबसे पहले तो वही अशांत कर रही है, हाँ लकड़ी टेबल पर मार करके, चलो पहले तो हाथ पर मारते थे अभी नहीं मार सकते हम, पर टेबल पर तो मार सकते हैं ना, साइलेंस साइलेंस लास्ट साइलेंस। अब साइलेंस मुख से बोलती है और टेबल पर लकड़ी मारती है तो उसका भी आवाज़, तो आवाज़ ही आवाज़ हुआ तो साइलेंस कहाँ से हुई। ऐसे एक टीचर आई थी, कहती थी बहन जी मैं तो बहुत तंग हो गई हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ बहुत तंग करते हैं बच्चे, तो हमने कहा कि जब आप चाहो क्लास में तो आवाज़ तो करेंगे बच्चे, तो बच्चे तो आप उस समय साइलेंस साइलेंस नहीं करो, उस समय आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और सबको दृष्टि दो, सबको दृष्टि दो। अब वो आपको देखेंगे कि आप तो इतने साइलेंस में, तो धीरे 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 क्या होगा, सब साइलेंस में हो जाएंगे। जब दादियां आती थी तो कैसे ना, एकदम आते ही दृष्टि देती थी, तो एकदम सब साइलेंस में चले जाते थे, कहने की भी जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि दृष्टि मिलती जाती थी, शक्ति लेते जाते थे और एकदम साइलेंस। तो साइलेंस में जाना है तो आवाज में आने की जरूरत थोड़ी है। वो तो इसीलिए वैल्यूज, मूल्यों को हम पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन अपने गुण अपने वाइब्रेशन से फैला सकते हैं, जरूर फैला सकते हैं। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं वो गुण स्वरूप बनने के लिए पहले स्मृति लाओ, क्योंकि आज भी कहा ना मम्मा ने कि वो स्वरूप बनने के लिए वो स्मृति चाहिए कि ओम माना मैं एक आत्मा हूँ और ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ ये इतना ऐसा अभ्यास पड़ गया, ओम शांति ओम शांति ओम शांति कितना आवाज में आते हैं, यहाँ तक कि बड़ा अजीब लगता है हम आगे जा रहे हैं और पीछे कोई कहता है ओम शांति दीदी ओम शांति, अभी मेरे को मुड़ के देखना पड़ेगा कौन बोल रहा है ओम शांति। ये बहुत बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो पीछे मुड़ के कैसे देखेंगे, अब ओम शांति उसको लगेगा पता नहीं मैं बहरी हूँ जो सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन पीछे मुड़ के क्यों हम देखेंगे, अगर उसको ओम शांति की तो आगे आकर के कहे ना, अब पीछे से कहेगी वो भी इतना दूर से ओम शांति ध्यान खिंचवाने के लिए, हाँ तो हम तो देखते ही नहीं है पीछे, भले ओम शांति बोलते रहे हाँ, क्योंकि कहाँ तक ऐसे पीछे देखते रहेंगे। तो ये वैसे भी बैड मैनर्स कहे जाते हैं ना, पीछे से बात करो, अगर किसी से बात करनी है तो क्या करना होता है, आगे से बात करनी होती है, आगे आकर के बात करनी होती है। तो इसीलिए बाबा भी हमें कहते हैं पहले स्मृति में आया फिर वो स्वरूप बनो, और ये सारे गुण तो हमारे अंदर ही है। तो पहले स्वयं में निश्चय, फिर कई बार स्वयं में तो बहुत निश्चय होता है, बाबा ने कहा ये हो वो है तो बहुत निश्चय होता है, लेकिन बाबा में थोड़ा निश्चय की कमी, बाबा ने ये ले लिया, बाबा ने आज भी कहा ना बाबा ने चलो तुम्हारे कृपा ते सुख घने रे, बाबा आपने बहुत सुख दिया है बहुत सुख दिया है, कल फिर कुछ ऐसा घाटा पड़ा हाँ बाबा आपने कितना दुख दिया हमें ऐसा आता है कभी कभी, बाबा ने दुख दिया, दिया बाबा ने दुख, पर बाबा ने दुख दिया ये कहना माना बाबा में निश्चय की कमी, बाबा क्यों दुख देगा, ये तो आपके कर्मों का हिसाब किताब है, वो तो आपको ही चुकतू करे करना है, बाबा आपने हमको मदद नहीं की, बाबा आपने ये नहीं किया, कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते कंप्लेन नहीं करो परंतु कंप्लीट बनो, तो वो कैसे कंप्लीट बनेंगे, हिम्मत रखो तो अपने आप मदद मिलेगी, मांगो नहीं। पर कई इतने हिम्मतहीन हो जाते हैं तो मदद तो मांगते ही है लेकिन हिम्मत भी मांगते हैं, बाबा आप ही हिम्मत दो, अब हिम्मत बाबा देवे तो बाकी आप क्या करेंगे बाबा तो मदद करेंगे ना, पर हिम्मत तो आपको रखनी पड़ेगी कि हिम्मत भी वही देवे, हिम्मत तो देते हैं बाबा की मुरलियों में, कितना कितनी हिम्मत मिलती है जो बाबा की मुरलियाँ चलती है उसमें बाबा हिम्मत ही देते हैं बच्चों को, इतना प्यार देते हैं इतना नशा चढ़ाते हैं ये बच्चों को, हिम्मत ही तो देते हैं बाबा। तो इसीलिए बाबा में निश्चय की अगर कमी हो गई, बाबा मैं तो ठीक हूँ पर बाबा आप मदद नहीं करते हो, माना ये भी बाबा में निश्चय की कमी, मैं ठीक हूँ पहले रजिस्टर देखो अपना मैं सचमुच ठीक हूँ, फिर चलो बाबा में भी निश्चय है पर फिर ड्रामा में निश्चय नहीं है, बाबा अगले कल्प में ऐसा ड्रामा नहीं करना बाबा ऐसा दृश्य नहीं दिखाना, बाबा अगले कल्प में ये नहीं होना चाहिए, अगर अगले कल्प में ये नहीं होना चाहिए माना ड्रामा में निश्चय की कमी है, नहीं अगले कल्प में नहीं होना चाहिए ये कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, थोड़ा तो कह सकते ना, तो अपने आप को आश्वासन देने लिए, बाबा मान लेगा अगले कलम में वो दृश्य नहीं देगा। लेकिन ये भी अगर कहना, ये भी ड्रामा में निश्चय की कमी। एक बार मम्मा रमेश भाई बता रहे थे कि मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आखिर कितनी बार ये ड्रामा रिपीट हुआ है, आखिर कुछ तो होगा ना हद, 50 बार, 100 बार, 200 बार, 500 बार, कितनी बार ये रिपीट हुआ है। तो मम्मा ने कहा कि ये तो कह ही नहीं सकते, फिर कितनी बार हुआ है तो फिर आएगा कितनी बार और रिपीट होगा, अब ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि नहीं कह सकते इसका मतलब कि आता नहीं उत्तर, ऐसे नहीं है, नहीं कह सकते माना ये उत्तर को इसका है ही नहीं, ये तो अनादि अविनाशी ड्रामा है। तो मम्मा ने बहुत इसका सुंदर उत्तर दिया, मान लो आज हम कहते हैं कि ये 50 बार रिपीट हुआ है, 50 बार ये ड्रामा रिपीट हुआ है, अब अगले कल्प में भी आप यही प्रश्न पूछेंगे तो अगले कल्प में मैं कहूंगी क्या 51 बार रिपीट हुआ है, हा? तो अगले कल्प में फिर भी वही निकलेगा ना 50 बार, तो 51 बार, तो 51 का तो माना ड्रामा में वो बदल गया, अब ड्रामा में बदल गया तो वो तो हूबहू रिपीट तो है नहीं। तो इसीलिए ड्रामा में निश्चय माना बाबा कहते उसमें 4 बातों का निश्चय चाहिए। एक निश्चय ये चाहिए ड्रामा में कि जो कुछ होता है कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। और दूसरा चाहिए ड्रामा में निश्चय माना जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण है। और तीसरा, जो कुछ भी ड्रामा में होता है यही सही है, यही सही है, यही राइट है, ऐसा ही होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा ये चेंज होता, ये भी ड्रामा में निश्चय की कमी है। तो कुछ भी नया नहीं है, दूसरा सब कुछ कल्याणकारी है, और तीसरा यही सही है। एक बार निर्वैर भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, किसी ने उसके ऊपर बहुत इसकी बहुत बहस किया ड्रामा के ऊपर, तो निर्वैर भाई ने कहा कि देखो अगर चलो कोई कहे कि हाँ भगवान ने ड्रामा बनाया है, भगवान ने बनाया, लेकिन ये ड्रामा ऐसा है जो सबसे बेस्ट ड्रामा है, सबसे बेस्ट, इनसे और अच्छा ड्रामा हो ही नहीं सकता है। जैसे रामायण का वो शूटिंग की ना, वो चोपड़ा कौन थे, इतना अच्छा वो किया, अभी उनसे पूछते थे आप दोबारा कुछ ऐसा करो, का ऐसी से दोबारा ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी इतना A1 जो कैसा बनाया उन्होंने रामायण। तो देखो तो इनसे और बढ़िया क्या हो सकता है, इनसे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता है, तो क्या कहेंगे, चेंज करें तो और घटिया हो जाएगा ना, घटिया हो जाएगा ना, चेंज करना माना क्या, इनसे बढ़िया तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा फिर, घटिया ही होगा। तो घटिया करना है या वो सबसे अच्छा है तो ऐसे ही रहने दो, हाँ वही रहने दो, क्योंकि अगर मानो दोबारा अगर ऐसी फिल्म बनाने जाए, हाँ रामायण जैसे बनाया, तो वो बनेगी भी नहीं, बनेगी भी नहीं, आर्टिफिशियलिटी आ जाएगी उसमें, तो कितना नेचुरल भी था, बहुत कुछ था, बहुत अच्छा लगा। आजकल तो सब आर्टिफिशियल है, सब आर्टिफिशियल, सब कंप्यूटराइज्ड है। मैं कई बार ये एक मिसाल देती हूँ कि मैं US गई थी, अमेरिका गई थी, वहाँ हॉलीवुड है, ये लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है, तो वहाँ पर बहुत स्टूडियोज है जहाँ फिल्मिंग होती है, इंग्लिश फिल्में शूट होती है। तो वहाँ पर एक थिएटर है, एक वो ये शूटिंग का स्थान है जहाँ पर सबको अलाउ करते हैं देखने के लिए, तो हम लोग भी गए थे देखने के लिए। तो उसमें ना कुछ चल रहा था, शूटिंग चल रही थी, परंतु बना वो दिखाने के लिए किया, तो बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था, ज़बरदस्त हॉल था, वहाँ डायमंड हॉल तो उसके बेट में कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा हॉल ही था। और उसमें कहाँ पर बिल्डिंग थी, कहाँ कुछ सीढ़ियाँ थी, क्या बहुत कुछ अंदर झमेला अंदर था। अब हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ले गए, हम लोग करीब 25-30 लोग थे, और हम सबको कहा कि ये रेलिंग है ना, इसको पकड़ना, पकड़ के रखना, और डरना नहीं, घबराना नहीं। अभी हम लोग तो जैसे ही बोला ना घबराना नहीं, तो वैसे घबराहट शुरू हो गई, पता नहीं क्या दिखाएंगे, क्या होगा। तो बस का जोर से पकड़ना, डरना नहीं, घबराना नहीं। अब क्या हुआ, वो सब अंदर लोग खड़े थे, आवाज कर रहे थे क्या क्या हो रहा था, तो एकदम से क्या हुआ, झटका आया। वहां पर सारे घबरा गए, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म जो था वो हिला, और हम लोगों ने जोर से पकड़ा हुआ था, प्लेटफॉर्म हिला। तो क्या हुआ, एक सीढ़ी पर एक आदमी चढ़ा था, वो गिर गया नीचे। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी बार वो प्लेटफॉर्म हिला, जोर से धमाका हुआ, और एक वो बिल्डिंग में आग लग गई। वो मनुष्य वो आग की लपेटों में था, और लपेटों में आके गिरा, नीचे गिरा। फिर तीसरी बार क्या हुआ, पता नहीं क्या, मतलब 8-10 बार वो हिला प्लेटफॉर्म, और कुछ न कुछ तबाही हुई सामने। अब वो बार बार यही कहे, हाँ इसको रेलिंग को जोर से पकड़ना, हिलना नहीं और डरना नहीं, डरना। तो फिर उसके बाद फिर तो कमाल हो गई। फिर क्या हुआ कि अभी सब होने के बाद सारी तबाही हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। और फिर कहा कि अभी देखो, तो हम सब देखते ही रह गए, अभी अब आगे क्या होगा। हमको लगा सब खत्म हो गया, क्योंकि रियल एकदम लग रहा था। और फिर जैसे हिला वो प्लेटफॉर्म, तो फिर वापस आ गई सीढ़ी, वापस आ गई बिल्डिंग, वापस आ गया वो आदमी, वापस आ गया, सब वापस आ गया सब वापस आ गया, सब कुछ वापस आ गया, जैसे था शुरू में वैसे ही वापस आ गया। तो फिर हम लोगों को बताया गया कि देखो, हम लोग जो शूटिंग करते हैं, आपको क्या लगता है ये सब नष्ट हो जाता है? कुछ भी नष्ट नहीं होता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है, ये सब विज्ञान का चमत्कार है, कुछ भी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि सब वापस आ गया। अब ये भी हम देखे ड्रामा के अंदर, अब ये जो आपका शरीर है, कल पहले भी ऐसा ही शरीर मिला था ना, भले शरीर त्यागा भी होगा, खत्म भी हो गया होगा, फिर अगले कल्प में फिर वही आएगा। अब ये इतना बड़ा निश्चय चाहिए ड्रामा में। मुझे याद आता है जब ये ओम शांति भवन बना ना, तो ये तो एक पहाड़ था, पहाड़। हाँ, उस समय जो थे, जिन्हों को पता है ओम शांति भवन कैसे बना, बहने याद है ना, एकदम पहाड़ था। अब वो पहाड़ को ब्लास्ट करते 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 कैसे वो बनाया ओम शांति भवन, और उसके जो बड़े बड़े पत्थर थे, वो सब दीवारें, वो पत्थरों से दीवारें बनाई। अब इतना सारा बड़ा बना, इतना बड़ा पहाड़ तोड़ा गया। तो जब बाबा से निर्वैर भाई ने पूछा, बाबा अगर ड्रामा हो बहु रिपीट होता है, तो ये जो इतना बड़ा पहाड़ था, ये अगले कल्प में फिर ऐसा हो जाएगा? बाबा ने कहा हाँ, हाँ, सीधा बोल दिया बाबा ने, हाँ ये फिर आप ये तोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे, फिर ये बनाएंगे, क्योंकि कुछ भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए विज्ञान भी क्या मानता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इज फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर, बट टोटल सम रिमेन्स द सेम। अब वो फॉर्म चेंज हुआ चलो, परंतु अगले कल्प में फिर क्या होगा, फिर वही फॉर्म वापस आएगा, वही फॉर्म वापस आएगा, वही फॉर्म बिल्कुल वापस आएगा, कुछ भी नहीं बदला, वापस वही आ गया। अब ये इतना बड़ा निश्चय चाहिए इस ड्रामा के अंदर है, जो हमें वो निश्चय हमें इतना स्थिर बनाता है। और जब ये निश्चय हो, तो आप का आपकी स्थिति क्या बनेगी, बिल्कुल पता है सब कुछ निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, ऐसा ही होना है। और जब निश्चित है और कल्याणकारी है, सब कुछ सही है, तो फिर निश्चिंत रहो। निश्चिंत रहो। अभी देखो परसों की जो बात बताई ना, आज क्लास में बताया वो भाई ने शरीर छोड़ा, तो उसी प्रकार एक और भी उदाहरण है, पता नहीं किसी सेंटर का, वो यंग था लड़का, तो वो बहुत बाबा की सेवा करता था, बहुत बाबा की सेवा करता था, तो वो परंतु बहुत बंधन था उसको, बहुत बंधन था, बस सेवा सेवा सेवा। तो उसका भी ऐसे ही हाल हुआ, मोटरसाइकिल या स्कूटर चला रहा था और अचानक वो उसका एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो जब बाबा को भोग लगाया गया तो बाबा से पूछा, बाबा ये तो सेवा के लिए जा रहा था, तो बाबा आपने इसको बचाया नहीं? तो बाबा ने पता है क्या कहा, कि बाबा ने कहा कि उसकी इच्छा बाबा ने पूरी की। अब क्या इच्छा थी उनकी, वो बाबा को हर वक्त कहता था, बाबा मेरा बंधन खत्म करो, मुझे बाबा की सेवा करनी है, मेरे घर वाले मुझे बाबा की सेवा नहीं करने देते हैं, मेरा बंधन खत्म करो। अब बाबा बंधन कैसे खत्म करे, तो बंधन कैसे खत्म किया, उठा लिया अपने पास बुला लिया, तो बाबा ने उसकी एक इच्छा पूरी कर ली, बंधन खत्म किया। दूसरा बाबा को हमेशा कहता, बाबा मेरा सारा परिवार बाबा के पास आए, मेरा सारा परिवार बाबा के पास आए। और सचमुच जब उसके भोग लगा उसका, तो सारा परिवार आया, माउंट आबू आया परिवार, उनका जो भी थे भाई बहने बहुत थे और बंधन बहुत डालते थे, और सारा परिवार आया, तो वो उसकी इच्छा भी बाबा ने पूरी की। अब बताओ, बाबा ने उसकी इच्छा पूरी की और भाई बहन क्या कहते, बाबा ने इसको बचाया क्यों नहीं, वो तो इतनी सेवा कर रहा था। तो आज भी देखो यही कहा ना, इतना इंजीनियर ये भाई, इतने ORC में उसने मदद की, वहाँ ज्ञान सरोवर में उसने मदद की, इंजीनियर था, और शांतिवन में इतनी मदद की, उसके पास बहुत बड़ी जमीन वो उसने दी, बाबा 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 की सेवा कुछ नहीं था, और हर प्रकार से मदद उसकी थी, और अचानक देखो, लेकिन उसको पता भी नहीं चला होगा। तो सचमुच हम क्या कहेंगे, बाबा ने उठा लिया, क्यों, सतयुग में इसकी जरूरत है। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तभी भी ये कईयों को संकल्प आया, मम्मा कैसे चली गई, बाबा ने मम्मा को रखा क्यों नहीं, क्यों शरीर छोड़ा, मम्मा ने बचाया क्यों, बाबा ने बचाया क्यों नहीं। लेकिन जब बाद में भोग लगा तो बाबा ने क्या कहा, बाबा को अभी एडवांस पार्टी की जरूरत है, और मम्मा एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी, जैसे यहाँ लीडर थी ना मम्मा, तो एडवांस पार्टी बाबा शुरू कर रहे हैं, तो उसमें लीडर कौन बनेगा, यही बनेगी। तो लीडर को बाबा पहले उठाएंगे, तभी तो उसके बाद दूसरे आएंगे, तो लीडर को बाबा ने बुला लिया। तो हम देखते हैं कि उसमें क्या राज भरे हुए हैं, वो हम तो जानते नहीं है, और हम कहते हैं ये क्यों बाबा ने ऐसे किया, ये उठाया, ये क्यों नहीं मदद किया, ये क्यों नहीं, क्यों तो उठ ही नहीं सकता है, इसमें भी कोई राज है, इसमें भी कोई गुह्यता है, ये बाबा ही जाने, क्योंकि हम तो नहीं जान सकते ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा में पूर्ण रूप से इतना निश्चय हो कि जो कुछ है सब सही है, सब निश्चित है और सब कल्याणकारी है, कुछ भी नया नहीं है, तो हमारी स्थिति कैसी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल निश्चिंत, जो है सब बहुत अच्छा, इसीलिए गीता का भी सार यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। विनाश के लिए भी देखो, ये तो विनाश अभी ये चालू तो हो गया, 2023 चाहे चल रहा है, परसों जो सारा ये आ रहा था ना साइक्लोन, अभी जबरदस्त साइक्लोन की स्थिति है गुजरात में, कच्छ में और महाराष्ट्र में भी, जुहू वगैरह वहाँ पर बहुत लहरें उठ रहे, कल तो जबरदस्त होना है, यहाँ भी उसका असर दिखेगा, बारिश आएगी। यहाँ भी छाता वाता लाए हो कि नहीं, लाए, अच्छा पता था पहले से ही, अच्छा अच्छा, तो कल तो आजकल तो लगता है दिन भर बारिश रहेगी, अभी का शाम रात से ही हवाएं चालू हो जाएगी यहाँ, और तो महाराष्ट्र में यह सारा बॉर्डर जो महाराष्ट्र का मुंबई में तो बहुत जोर से तूफान इस समय है। फोन करके पूछ लिया आप लोगों ने? नहीं पूछा? फोन बंद कर दिए क्या? एक बार पूछ लेना क्या हाल है मुंबई का, क्योंकि बाबा ने तो पहले से बता दिया मुंबई तो जाएगा पानी में। जाएगा, उसमें आपको खुशी है? जाएगा, खुशी है जी, आप जाना ही है। अच्छा जी बोलो, हम तो यहाँ बैठे हैं बाबा के घर में, बाबा की गोद में है ना। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा कि माउंट आबू में तो कभी बाढ़ आ ही नहीं सकती है, इतनी ऊंचाई पर। यहाँ थोड़ी बाढ़ आ सकती है, बाकी भूकंप तो आ सकता है। और परसों के दिन जब ये अनाउंसमेंट सारा हुआ, उस दिन सुबह बड़ा भूकंप आया था, 5 पॉइंट ऑन द रेक्टर स्केल। अगर थोड़ा और आगे होता बहुत तबाही होती, उसमें दिल्ली, NCR, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ तक कि पाकिस्तान और उस तरफ ये सारा अफेक्ट हुआ। बहुत जोर से जलदरा, वो क्या बोलते हैं इसको, भूकंप आया, तो बहुत आया वहाँ। तो वो बता रहे थे कि कैसे भूकंप का असर हुआ, यहाँ नहीं पता चला, राजस्थान में नहीं मालूम पड़ा, लेकिन दिल्ली और उसके ऊपर के जो इलाके वहाँ पर ज़बरदस्त भूकंप आया। फिर भी 5 आया, अगर 6 तक जाए ना तो तबाही शुरू होती है, 7 तक जाए तो ख़त्म, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन बच गए। परंतु अनुभव हुआ सबको, सब हिला, पता चला। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और 2023 की भी भविष्यवाणी है, और 2024 की तो और बड़ी बड़ी भविष्यवाणी है ना, बहुत कुछ है। तो सब तैयार है ना उसके लिए, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, ऐसे ही नहीं बस आप खुश हो जाएंगे। बाबा ये भी कहते हैं कि घर चलने को तैयार है, तो सब बच्चे कहते हैं हाँ बाबा तैयार है। हाँ बच्चे कहते हैं तैयार है, आप क्या कहेंगे, तैयार हो? जो समझ रहे हम तैयार है घर चलने के लिए, अभी हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा, फिर बाबा पूछते, अच्छा हाँ बाबा ने एक बार कहा था घर चलने लिए सब तैयार हो, लेकिन संपूर्ण बने हो? संपूर्ण तो बने नहीं हो, तो घर चलने लिए तैयार हो तो बिना संपूर्ण बने चलेंगे क्या घर? क्या करना पड़ेगा? तो संपूर्ण बनना पड़ेगा। अब संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा तेज करनी होगी, एक बाबा दूसरा न कोई। तो देखो ड्रामा भी पर भी निश्चय, सब प्रकार का निश्चय हो, और बेहद परिवार में भी निश्चय, तो देखो कोई दुनिया की शक्ति हमको हिला नहीं सकेगी। चल ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
अवश्य ही सभी को भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट हुआ होगा। दीदी का एक हाथ हिलाकर शुक्रिया, आभार, धन्यवाद